माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात में बात जिसमें ना हो अप्सरा की, हो ना परिया जहाँ आसमानी, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी, जो किसी भी हृदय को हिला दे, आदमी आदमी को मिला दे, आग कुछ इस तरह की लगा दे, आग में भी माधुरी मिला दे, जो सुने हो चले पानी पानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें ना राजा हो और ना रानी, जिसमें ना हो अप्सरा, जिसमें ना हो परिया, जिसमें क्या हो जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। जो कहानियाँ हम सुन रहे हैं, जिस कहानी में हम रहते हैं, जो हमारे जीवन की कहानी है, वो कहानी एक भ्रम पर खड़ी है और संपूर्ण जीवन एक विभ्रम की अवस्था है। जब तक ये सारे भ्रम तोड़ ना दिए जाए, तब तक चेतना उस ऊंचाई को नहीं छुपाती, उसी भ्रम जगत में जीते, जीती है, मर जाती है। तो लक्ष्य रखना है कि सारे भ्रमों को तोड़ दो। अव्यक्त वाणी 17 अक्टूबर 1981। फरिश्ता अर्थात अर्श निवासी, अर्श अर्थात अर्श के दो अर्थ है, दो या तीन अर्थ है। अर्श अर्थात आकाश, दूसरा अर्थ अर्थात आकाश से परे जो आकाश है, वो आकाश से परे जो आकाश है, आकाश के उस पार जो आकाश है। तीसरा अर्श अर्थात सिंहासन, तख्त। बाप दादा सभी बच्चों को नैनो की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने के इशारे दे रहे हैं। इस संसार से परे भी और एक संसार है, जिस संसार को हम सत्य मान बैठे और यही सब कुछ है, उससे भी परे कोई और संसार भी है जिसकी हमें बहुत कम खबर है। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही तत्त्वम का वरदान देते हैं। जैसे मैं वहां रहता हूं, तुम भी वहां रहने वाले हो। तत्त्वमसी, यू आर दैट, तुम वो हो। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आए हो। कल भी हमने देखा था, हम यहां आए हैं, संदेश दिया और बाहर। किन किन चीजों से बाहर? शरीर से बाहर, सेवा से बाहर, वाणी से बाहर, संसार से बाहर, संबंधों से बाहर, रोल कॉन्शियसनेस से बाहर, साधनों से बाहर। जब आए तब इनका प्रयोग किया और जब मर्जी हो तब ऊपर आए, साधनों का प्रयोग किया, काम पूरा हुआ, चले गए। आए, लेटर डिलीवर किया और घंटी बजाते हुए साइकिल से आगे, कुरियर मैन, पोस्टमैन। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ता बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। कब करो? सदा अर्थात निरंतर, श्वासोश्वास, सदा यह स्मृति रहे। स्मृति, अभी अभी अव्यक्त मुरली चली थी शांतिवन, क्या कहा बाबा ने? कौन सी? सूक्ष्म चेकिंग करो खुद की, चार। आत्मिक दृष्टि नेचुरल है। दूसरी, स्मृति और विस्मृति का खेल तो नहीं कर रहे, सारा खेल ही इसका है। जब जब स्मृति में है तब हम पुण्य कर्म करेंगे, जब जब विस्मृति में है जो कुछ भी किया जाएगा, जो कुछ, सब कुछ पाप कर्म होगा, विकर्म होगा, वो सारे कर्म होंगे जिसका परिणाम पश्चाताप होगा, करना पड़ेगा उसके लिए। इसके लिए खेल सारा स्मृति और विस्मृति का है, होश और बेहोशी का है, जागरण और सोने का है। इस सोने को तोड़ देना है, इस विस्मृति को तोड़ देना है, इस बेहोशी को तोड़ना ही अध्यात्म है, और दूसरा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। विकारों से लड़ते रहना अध्यात्म नहीं है। काम विकार से लड़ते हैं, क्रोध विकार से लड़, ये लड़ना हटाओ। क्या लाओ? प्रकाश। प्रकाश के आते ही अंधकार अंधकार रहेगा ही नहीं। अंधकार भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? वो कहता, ये जो सूरज है ये मुझे बहुत तंग करता है, जहां मैं रहता हूं ये आ जाता है, मुझे सोने भी नहीं देता है ठीक से, रात को सुबह सुबह आ जाता है, दिन रात मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बहुत परेशान कर रहा हूं। आपके राज में ऐसा अत्याचार, हे प्रभु त्राही माम मेरी रक्षा करो। भगवान कहते, अच्छा सूरज की ये मजाल? सूरज को बुलाते, सूरज तुम पर आरोप है कि तुम अंधकार को बहुत तंग करते हो। सूरज कहता है, अंधकार? मैंने उसे कभी देखा ही नहीं, कृपया उसे मेरे सामने लाइए तो मैं उसे माफी मांगू, पर ये केस अभी तक भगवान के फाइल में पड़ी हुई है। पेंडिंग, क्योंकि कैसे अंधकार को सूरज के सामने लाया जाए, असंभव है। जहां सूर्य है वहां अंधकार आ नहीं सकता, जहां ज्ञान का प्रकाश है वहां अंधकार विकार आ नहीं सकते। तो साधना विकारों से लड़ने की नहीं है, साधना प्रकाश को लाने की है, ज्ञान को बढ़ाने की साधना है, अनुभव को बढ़ाने की साधना है। इसको कैसे जीते, उसको कैसे जीते, अमृत वेला कैसे हो, मेरा योग नहीं लगता, अभी क्या करूं, बाबा से अनुभव कैसे बढ़ाऊं, ऐसे बैठ के योग करूं, सीधा बैठ के करूं, क्या शीर्षासन करके करूं, क्या करूं, कौन सी मुद्रा में करूं, आंखें खोलूं, आंखें बंद करूं, इधर देखते हुए करूं कि उधर देखते हुए करूं, म्यूजिक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, गीत सुनूं कि नहीं सुनूं, क्लास सुनूं कि नहीं सुनूं। अच्छा सार धाम में सबसे पावरफुल कौन सा है, वहां करेंगे बैठ के। सदा यह स्मृति रहे। तो चार प्रश्न पूछे थे पापा ने, पहला आत्मिक दृष्टि नेचुरल है, दूसरा खेल और विस्मृति का, स्मृति और विस्मृति का खेल, तीसरा जमा का खाता, और चौथा शुभ भावना, शुभ कामना, दुआए कितनी दी। ये चेकिंग करो, पूरी मुरली में दो ही बातें थी, सेल्फ चेकिंग और सेल्फ प्लानिंग। अपनी प्लानिंग खुद बनाओ, दूसरों का प्लान हमारे शायद काम में नहीं आएगा, हमें अपना प्लान खुद बनाना है, हर चीज का खुद प्लान करना है। तो सेल्फ प्लानिंग, सेल्फ चेकिंग और टर्न करना, कितने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं भगवान भी। सदा यह स्मृति रहे, मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूं, फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी। फर्श में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठंडा लगता है फर्श में प्रॉब्लम क्या क्या है, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और फर्श में या धरती पर क्या क्या प्रॉब्लम है, ये जो धरती है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऊपर रहने में प्रॉब्लम कम है, यहाँ क्या क्या दुख है, क्या असुविधाएं है, क्या तकलीफ है धरती पर, यहाँ कांटे लगाते रहते, कांटों का जंगल है, ये धोखों की दुनिया है, और सब खाली है, ये खोखा है, एक मुरली में था, ये दुनिया खाली खोखा है, ये भंभोर है जिसको आग लगने वाली, और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ट्रैफिक बहुत है, फरिश्ते ऊपर ट्रैफिक कम है, यहाँ पर अपघात है, वहाँ पर अपघात नहीं है, यहाँ पर खतरे ही खतरे, वहाँ कोई खतरा नहीं आकाश में, यहाँ पर स्पीड कम है, ट्रैफिक ज़्यादा है तो स्पीड कम, वहाँ पर स्पीड बहुत तेज है, और इस धरती पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ बीमारियाँ बहुत है, ऊपर बीमारियाँ कम है, और वहाँ राइट लेफ्ट या रूल से ट्रैफिक है, वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, और यहाँ झगड़े ही झगड़े, झगड़ों की दुनिया है, या ठंडी गर्मी की दुनिया है, यहाँ पर अंदर कुछ बाहर कुछ, ये धोखेबाजों की, खौफनाक लोगों की दुनिया है, और यहाँ खाओ पियो और बीमार पड़ो की दुनिया है, खा खा के बीमार पड़ने की दुनिया है ये। तो अर्श में प्रॉब्लम, यहाँ स्लीपर ही है बहुत, फर्श, यहाँ कंपटीशन ही कंपटीशन है, बचपन से बच्चे को क्या सिखाया जाता है, कंपटीशन, उसका क्या दोष, उसको सिखाया ही ऐसे गया है कि तुमको वो जो बाजू वाला पिंटू है उससे ज्यादा मार्क लेने हैं, बेचारा वो लगा रहता है अपनी पढ़ाई में, और जब थोड़े कम मिलते हैं तो डर रहता है उसको। बचपन से हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है, कंपटीशन। हर व्यक्ति अलग है, इंडिविजुअल है, एक यूनिक क्रिएशन है, उसका किसी और से कंपैरिजन कैसे हो सकता है, हम कंपैरिजन की दुनिया में रहते हैं, और ये कंपैरिजन बहुत डेंजरस है, कंपटीशन डेंजरस है। उनका अपना कुछ फायदा भी है बट प्रॉब्लम भी है, और डर, ये डर की दुनिया है, ऊपर डर नहीं है, जितना हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे डर खत्म। डर कहाँ है? नीचे की अवस्थाओं में। अंधकार में डर है, प्रकाश में कोई डर नहीं है। और जॉब चाहिए, सब चाहिए, सुविधाएं चाहिए, पैसा चाहिए। तो फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी। यहां पर बहुत भारीपन है, वहां पर बहुत हल्कापन है। और ये भारीपन जो होता है बहुत खतरनाक है, कुछ भी करने नहीं देता है। मन भारी हो गया है, सोच सोच के किसी दुख के कारण भारी है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के कारण, कोई कोई पाप किया हुआ है, विकर्म किया है, उसके प्रति भारीपन है। किसी को किसी और के प्रति वजह से भारीपन है। किसी को क्यों भारीपन है वही खोज चालू है, अभी तक मिली नहीं। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि वृत्ति से परे रहने वाले सब बातों से न्यारे सदा व बाप के न्यारे और प्यारे दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ते फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। तो ये फरिश्ते की परिभाषा है। फरिश्ता अर्थात हल्का, फरिश्ता अर्थात न्यारा, फरिश्ता अर्थात जो सूली पर लटका हो गया, बाबा की याद की फांसी, एक रस स्थिति। एक व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने आप को फांसी लगाने की सोचता है और फांसी लगाता है। तभी उसका मित्र आ जाता है, कहता है क्या कर रहे हो? वो कहता है फांसी, बहुत दुखी हूँ दुनिया जीवन से। पर तुमने फांसी कहाँ लगाई? फांसी गले में लगाई जाती है, तुमने तो ये अपने हाथों के नीचे फांसी लगाई है, बगल में ऐसी थोड़ी लगाई जाती है फांसी। फांसी गले में लगाई जाती है। वो कहता है गले में पहले वही तो लगाई थी, पर इतना सफोकेशन हो गया कि निकालनी पड़ी फिर। एकदम जी मचलने लगा, इसलिए ये कैसी फांसी है हमारी। फांसी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक फांसी, जिसने कोई तकलीफ ना हो, ऐसी फांसी। तो फरिश्ते जो होते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते, वो ऊपर रहते। शरीर इधर है पर चेतना ऊपर है। सात चीजों से वो मुक्त है। सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जैसे ही चेतना ऊपर ऊपर उड़ने लगती है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती का, ये हमें प्रभावित नहीं करता, हम ऊपर है। और सारी मनुष्य जाति जो धरती पर है वो इसके प्रभाव में है। जैसे 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 ऊपर जाते हैं ये हटने लगता है। जब एस्ट्रोनॉट्स पहली बार मून पर गए, नील आर्मस्ट्रांग, उसने देखा धरती की ओर, उसे दिखा कहाँ है अमेरिका, कहाँ है भारत, कहीं कुछ भी नहीं है, सब एक है, ये सब पार्टीशन हमने क्रिएट किए है। उसने अपना अनुभव लिखा है कि ये मैं धरती को देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, तो सब एक ही दिखाई दे रहा है। और ना ही वो भारीपन है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हल्का 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 होता है व्यक्ति, नीचे जितने जाओगे उतना भारी भारी भारी। सबसे ज्यादा देहभान में लाने वाला काम विकार है। सबसे ज्यादा देहभान की आवश्यकता काम विकार के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा फंसाने वाला काम विकार है। महाशत्रु क्यों कहा गया है उसको? क्रोध में इतने देहभान की आवश्यकता नहीं है, लोभ में, मोह में, अहंकार में कम। सबसे ज्यादा धरती है, धरती तत्व वो काम है। एक एक विकार का संबंध एक एक तत्व से है, वो आप खोज कर सकते हैं किस किस विकार का संबंध किस किस तत्व से है। इसलिए जो धरती तत्व से उपजा हुआ भोजन है वो बहुत भारी करता है, और आकाश तत्व वाला जो है वो हल्का करता है। तो सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हर चीज़ जो हमें नीचे खींचती है, पकड़ के रखती है, वो बंधन है। फरिश्ते अर्थात लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से परे, वहां एक दूसरा लॉ ऑपरेट करता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेस। फरिश्ते अर्थात वेटलेस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्हें प्रभावित नहीं करता, वो वेटलेस होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेस, ऊपर 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 ऊपर, तो निरंतर अपने आप को ऊपर रखना है। धरती पर चलते हुए भी ऐसे चलो जैसे धरती पर हम चल ही नहीं रहे, हम आकाश में चल रहे ऊपर। ये पहला नियम, तन यहां मन वहां, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा लॉ ऑफ लैंड, जो लीगल में है वो जानते होंगे, लॉ ऑफ लैंड, लॉ लैंड लॉज कहते हैं उसको। हर एक देश के अपने अपने नियम हैं। फरिश्ते इन सभी से परे है, वो किसी एक, वो भारत की नहीं है, वो आबू की नहीं है, वो अमेरिका की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं होते फरिश्ते। ये ऑस्ट्रेलिया के फरिश्ते, ये पाकिस्तान के फरिश्ते, ये अमेरिका के फरिश्ते, फरिश्ते यूनिवर्सल है, सबके, सार्वभौम, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सर्वकालिक। ये फरिश्तों की पहचान है। तो फरिश्ते अर्थात जो लॉ ऑफ लैंड है उससे परे, वो उन्हें बांधता नहीं है, इसलिए हमारी जो सकाश है सबके लिए हो। जो उस दिन भी देखा था, पांच तत्व, पांच खंड, पांच सत्ताएं, पांच प्रकार की आत्माएं, ये पांच इंद्रिय, ये पांच प्रकार के ब्राह्मण, मधुबन के पांच स्थान, सभी इंक्लूड हो जाए उसमें, सब कुछ, कुछ भी ना छूटने पाए। वो जो 40 बातें थी वो तो है, प्लस अपनी पर्सनल सकाश, वो अलग, जो खास आत्माओं के लिए, जिनके साथ बहुत ही प्रेम भरे हिसाब किताब चल रहे हैं, उनके लिए अपनी अलग सकाश, अलग साधना। तो फरिश्ते अर्थात लॉ ऑफ लैंड से परे, अपने आप को किसी एक देश का नहीं समझना, हम सर्वदेशिक है, सर्वकालिक है, सार्वभौम, वासुदैव कुटुंबकम। उस दिन मुरली में था ना, क्योंकि सब हमारा ही परिवार है। कब था? लास्ट संडे। सब हमारा ही परिवार, किसमें था वो? कहाँ 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 था? हाँ, जो ग्लानी करने वाला है उसके प्रति भी शुभ भावना, क्योंकि सब हमारा ही परिवार है, इसलिए। तीसरा, संसार का लॉ, संसार का नियम। संसार का नियम क्या है? जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। फरिश्ते जो होते हैं ये बर्थ डेथ और रीबर्थ से परे है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। बर्थलेस डेथलेस है फरिश्ता, अजन्मा मृत्युंजय, कोई भी डर नहीं है, इसलिए दूसरों की मृत्यु से भी वो नहीं डरते, दूसरों की मृत्यु भी उन्हें कपाती नहीं है, अप्रभावित रहते हैं। ये फरिश्तों की पहचान है, क्योंकि ये जन्म मृत्यु जन्म ये भी एक भ्रम सा है। आत्मा तो वही है, शरीर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पर उसी में हमने अपने संबंध जोड़ रखे हैं, और वो हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है, और सारा जीवन उसमें गुजर जाता है, फिर भी उस भ्रम से छूट नहीं पाते। जैसे अभी अभी सुना रहे थे क्लास में, एक व्यक्ति बीच सड़क पर खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, इतनी सारी ट्रैफिक है, उसके बीच में वो बीच सड़क पर खड़ा है, गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रही है, वो उठ रहा ही नहीं है, लोग देख रहे, चिल्ला रहे, उसको गालियां दे रहे, उठो उठो, पर वो खड़ा है और क्या कर रहा है? नाव चला रहा है। एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है, वो अपनी कार से उतरता है कि तुम क्या कर रहे हो, उठो। वो कहते देख नहीं रहा हूं, नाव चला रहा हूं, तुमको बैठना है तो बैठो। वो व्यक्ति कहता है नाव कहाँ है? तो वो कहता है अच्छा नाव नहीं है, फिर तो मुझे तैरना पड़ेगा। एक भ्रम टूटा कि नाव नहीं है, दूसरा भ्रम खड़ा किया, कौन सा? कि पानी तो है ना, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। अध्यात्म अर्थात सारे ही भ्रमों को तोड़ देना और संपूर्ण जागरण, संपूर्ण जागृति। सारा काम केवल ये दो ही शब्दों का है, जागरण होश, स्मृति विस्मृति। इस पर संकल्प नहीं करो कि मुझे अमृत वेला इतने बजे उठना है, उतने बजे उठना है, ये सब नहीं करो। मुझे मुरली का चिंतन करना है, ये सब भी नहीं करो। मुझे विकारों को छोड़ना है, ये सब भी नहीं। बस संपूर्ण जागरण की अवस्था। उस जागरण की अवस्था में जो कुछ होगा अपने आप होगा, अपने आप आँख खुलेगी, अपने आप। बेहोशी में सोते हैं इसलिए बेहोश होके उठते हैं, बेहोशी में ही सोते हैं ना। तो फरिश्ते अर्थात ये संसार से परे, इस चक्र से परे। अगला फरिश्ते अर्थात ये जो साइकिल है मौसम का, इस साइकिल से परे, साइकिल ऑफ सीजन। कितने सीजन होते हैं, कितने सीजन होते हैं? तीन, चार, पांच, छः। ये सारा सीजन चेंज होते रहते हैं इस संसार में, और उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ भी चेंज होते रहता है। ठंड लगती है तो ऐसा पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं होती है। अजीब सा लोग कहते हैं ना, अजीब सा मौसम ही ऐसा है आज, एकदम डल सा लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं हो रहा। कोई ऐसी योग में बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, मुरली पढ़ने की भी इच्छा नहीं हो रही है, एकदम ऐसा मौसम ही ऐसा। धूप आते ही एकदम अच्छा लगने लगता है, तो एकदम मतलब डल सा महसूस हो रहा है। मौसम ऐसा, क्या करे, हमारा कोई दोष नहीं है, मौसम का दोष है। फरिश्ते अर्थात मौसम के प्रभाव से मुक्त। छह प्रकार के मौसम है, जनवरी फरवरी विंटर, चाहे जनवरी फरवरी हो ठंडी हो कोई प्रभाव नहीं। मार्च अप्रैल स्प्रिंग बहार, सब जगह ये मौसम होंगे जरूरी नहीं है, बट छह टाइप के हैं। आबू में तीन ही है, कहीं चार होंगे, कहीं पांच। मई जून क्या होता है, समर। जुलाई अगस्त ऑटम, जुलाई अगस्त रेनी, सॉरी विंटर, रेनी सीजन या विंटर, व्हाट एवर यू कॉल। कहाँ तक आ गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये क्या होता है, ये ऑटम, ऑटम पतझड़। नवंबर दिसंबर प्री विंटर, प्री विंटर इसको कहते हैं, प्री विंटर। ये है प्रॉपर विंटर, ये कह रहे नहीं, ये सारे सीजन हैं, होते रहते हैं, पर इनका प्रभाव हम पर ना पड़े, हमारे पुरुषार्थ पर ना पड़े, ये फरिश्ता स्थिति है। चाहे कोई भी मौसम हो, उठने का टाइम सेम रहेगा। ठंडी है तो थोड़ा सा 15 मिनट आगे, थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी लग रही है, हाथ भी बाहर निकालने की इच्छा नहीं होती है रजाई से, कुछ भी बिल्कुल, नाक भी नहीं, बिल्कुल अंदर। फरिश्ता अर्थात मौसम के साइकिल का जो लॉ है, उस लॉ से परे वो रहता है, क्योंकि ऊपर रहता है, इसलिए ये सब चीज़ें उसे प्रभावित नहीं करती। और ये सारा मन का खेल है, हमने मन से माना है। बारिश बहुत आ रही है, चीज़ों को जोड़ा है, बारिश आ रही है अब ये खाना चाहिए, वो है वो खाना चाहिए, ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग बनाई है सारी। फरिश्ता अर्थात मौसम का प्रभाव नहीं। अगला फरिश्ता अर्थात दिन और रात का जो साइकिल है उससे बाहर। ऊपर जो है वो दिन रात नहीं है। दिन रात क्यों होता है, दिन रात क्यों होता है, धरती घूम रही है किसके गिर्द? सूरज के और अपने साइकिल में भी घूम रही है। और ये गिनना बहुत मुश्किल है कि कितना टाइम लगता है, फिर भी निकाला गया कितना समय, 24 आवर्स में अपने इर्द घूमती है। पर वो एग्जैक्ट 24 नहीं है, वो 23 आवर्स 56 मिनट्स है। मतलब एक दिन इतना है, पर वो गिनना ही मुश्किल है। क्योंकि गिने कैसे? क्योंकि वो साथ साथ सूर्य के भी इर्द गिर्द घूम रही है धरती, इसलिए बहुत टफ है। फिर भी कोई सितारा घूमकर वापस धरती उसी सितारे में कब पहुंचती, उस अनुसार जो टाइम निकाला गया है वो 23 आवर्स 56 मिनट्स है, जिसको हम लेते हैं 24 आवर्स। तो फरिश्ता अर्थात दिन हो या रात हो, उसका कोई प्रभाव नहीं उस पर। दिन में अच्छा होता है, रात को अच्छा नहीं होता है। रात को अच्छा होता है, दिन में अच्छा नहीं होता है। अमृत वेला बहुत अच्छा है स्थिति, दिन में स्थिति अच्छी नहीं है। फरिश्ता अर्थात एक रस स्थिति, 24 आवर्स एक रस स्थिति, जो अवस्था अमृत वेला है वही अवस्था बहुत दिनचर्या में हजारों चीजें हो रही है, सबके बीच में है, पब्लिक के बीच, फिर भी वही अवस्था आंतरिक। व्यक्ति बाहर से बोल रहा है पर अंदर से मौन है, सेवाएं चल रही है पर अंदर चुप है, वो अवस्था। फरिश्ता इस कॉन्शियसनेस में रहता है कि मुझ पर दिन और रात का कोई प्रभाव नहीं। या दिन में अमृत वेले यदि कोई हमसे कुछ कहे गुस्से में आकर, तो हम क्या कहेंगे? चुप। हमारी रिएक्शन दूसरी होगी। और वही व्यक्ति वही बात अगर दिन को 12 बजे आकर कहे तो अवस्था दूसरी है। तो समय के साथ हम बदल रहे हैं। फरिश्ते अर्थात एक रस, फरिश्ते अर्थात ये जो साइकिल है दिन और रात का, इस साइकिल से बाहर, क्योंकि ये तो धरती पर है ना साइकिल, धरती से बाहर निकलने के बाद ये साइकिल नहीं ऑपरेट करेगा वहां पर। इसलिए फरिश्ते सोते हैं कि नहीं सोते? कितना घंटा सोते हैं? हाँ, जो 3-3 बार भोजन करते हैं उनके लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं सोएंगे तो शरीर रिएक्ट करेगा, थकान होगी, सब कुछ होगा। जो इतना हेवी अपने शरीर में डाल रहे हैं डाइट, उनके लिए नींद बहुत ज्यादा है और जरूरी भी है। जितना ज्यादा भोजन उतनी ज्यादा नींद, जितना कम भोजन उतनी कम नींद और उतनी ऊर्जा अधिक, सीधा हिसाब है। तो फरिश्ते अर्थात निद्राजीत, तो ये एक साइकिल। अगला लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा कहाँ ऑपरेट करता है? कार्य कारण का नियम इस धरती पर, जो करोगे वो पाओगे। फरिश्ते ये सब से परे रहते हैं, इसके लिए करते हुए भी अकर्ता। भगवान धरती पर आता है, मुरली चलाता है, क्या उसका भी हिसाब बनता है? वो ग्रुप से बातें करता है तो क्या उस ग्रुप से इसका हिसाब किताब है? क्या क्या कहेंगे इंदौर का ग्रुप, इन्होंने मुझे पिछले युग में कल्प में सुनाया था, अब मैं इनको सुनाऊंगा? क्या उसके भी हिसाब है? क्या भगवान के भी कार्मिक अकाउंट्स है? नहीं, वो कार्मिक अकाउंट से मुक्त है, वो कर्ता भाव से ही मुक्त है, इसलिए कार्मिक अकाउंट उसके है ही नहीं। कार्मिक अकाउंट का कारण क्या है? कर्ता भाव। जिसमें कर्ता भाव ही नहीं है वहां कार्मिक अकाउंट बनते नहीं है। इसके लिए वो सारे कर्म न्यूट्रल कर्म होते हैं, बाबा कहते हैं अकर्म। कलयुग में जो कुछ किया जाता है विकर्म हो जाता है, इसके लिए न्यूट्रल कर्म। हमारे पास कोई चीज है, हम किसी को दे दी, हमें याद भी नहीं उसको दी, उसको भी याद नहीं हमने दी, न्यूट्रल कर्म। पर हमने इच्छा से दी, ये तुम्हें पसंद है ना खास, इसलिए हमने तुम्हारे लिए लाई है। ये स्वेटर तुमको पसंद है ना ऐसा, इसलिए हमने तुम्हारे लिए लाया। दूसरे दिन फोन करके पहना क्या? कब तक? अब तक एक महीने से देख रहे हो, अभी तक क्लास में एक बार भी नहीं पहना हमने दिया हुआ स्वेटर, वो कब पहनोगे? दिया तो, पर आसक्ति से दिया। इसलिए कोई भी चीज जब मिलती है ना तुरंत यूज नहीं करो उसको, रख दो उसको थोड़ी देर, उसके मोह के वाइब्रेशन निकल जाने दो, फिर यूज करना उसको। बाद में पहनो या किसी को दे दो, तब तक नहीं पहनो जब तक यही भूल जाए कि यह दिया किसने था। तो फरिश्ते अर्थात कर्म का सिद्धांत जो है, कार्यकारण का नियम जो है, द ग्रेट लॉ जो है, उससे ही परे रहते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षी भाव में कर्म किए जाते, कर्तापन का भाव रहित कर्म है सारे। मुरलियों में बाबा ने कहा, सेवा करो परंतु उपराम बेहद। भगवान जैसे कर्म करता है वैसे, वो कैसे मुरली सुनाता है? आया, मुरली सुनाई और निकल गया। बाद में देखता है क्या, किस किस को अच्छा लगा मेरा, किस किस को अच्छा नहीं लगा? अच्छा अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ और करना चाहिए क्या? अच्छा, कोई इम्प्रूवमेंट? किसी से जाके पूछता है, मेरी क्लास ठीक तो रही ना, पसंद आई तुमको? कोई राय, कोई सजेशन, कोई फीडबैक? क्या ऐसा हो गया, क्यों डिसलाइक कर रहे हो? भगवान को भी तो डिसलाइक करते लोग, कमेंट बॉक्स। भगवान को भी डिसलाइक है, ये तुमने ठीक नहीं बोला, पिछली बार ठीक बोला था, उस टाइम पे फॉर्म में था बाबा, आज पता नहीं तैयारी नहीं थी, कैसी मुरली चलाई? लास्ट टाइम की मुरली में तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, इसमें तो वही वही पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं। उसको भी तो तैयारी लगती होगी ना, नीचे आने से पहले लास्ट मिनट रिवीजन, फटाफट फटाफट, बेफिक्र बादशाह आज बाप दादा, बेफिक्र बादशाह बच्चों से मिलने आज बाप दादा, पहले याद और फिर स्लोली विथ एक्शन। तो भगवान ये सब चीजों से परे है, उसे ये सब चीजें अप्लाई नहीं करती है। तो बाप समान और भगवान समान बनना अर्थात जैसे वो कर्म करता है डिटैच्ड, वैसे कर्म करना। जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन मेरा जन्म मेरे कर्म दोनों दिव्य है। मटेरियल नहीं है वो, भौतिक नहीं है, पार्थिव नहीं है, अभौतिक है। तो भगवान फरिश्ता अर्थात अकर्ता, अकर्म किया परंतु वो कर्ता भाव ही नहीं है उसमें, अप्रभावित है, मैं है ही नहीं उसमें, मैंने किया। भगवान जब मैं भी कहता है, उस मैं में भी संपूर्ण निरंकारिता है। नहीं तो हम में से कोई भी अगर कहता है मनुष्य कि मैंने ये किया, तो अहंकार है ही उसमें। एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त मैं कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है वास्तव में, क्योंकि उसका मैं ही संपूर्ण निरहंकारिता है। हम जो भी मैं कहेंगे उसमें कूट कूट कर अभिमान भरा है हमारा। इसके लिए मुरलियों में आता है, निष्काम कर्म मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता, ओनली मैं और मैं बस। कितने हो गए? छह हो गए। लास्ट लॉ ऑफ जेंडर, फरिश्ते जो होते हैं वो ना तो स्त्री है ना पुरुष, अलिंग है, और यही बात उसको विकारों से मुक्त कर देती है। ये भाव कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, इसमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। फरिश्ते अर्थात उनका शरीर जो है वो लाइट का बना हुआ है, तो ना तो स्त्री है ना तो पुरुष। इस कॉन्शियसनेस में रहना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ जेंडर। तो कोई आकर्षण ही नहीं, किसी का भी आकर्षण नहीं, किसी भी तरह का आकर्षण नहीं। यहां पे हमने लड़ाई नहीं की है काम विकार से, यहां ब्रह्मचर्य सहज परिणाम है। एंजल्स फरिश्तों की साधना, एंजल जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं क्या? उन्हें तो शायद शब्द भी पता नहीं होगा। कई लोग स्वरूप है हमारे इस ज्ञान का, पर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसका कभी सुना ही नहीं नाम, पर वो हमारा सारा ज्ञान है उसका, वो स्वरूप है, उनमें उतनी विनम्रता है, सब कुछ है उनमें, जो हम कोशिश कर रहे हैं लाने की अपने जीवन में, पर आ नहीं रहा है। कई सारे लोग आपने देखा होगा कितने निरंकारी होते, उन्हें ज्ञान पता ही नहीं बट बहुत निरंकारी, और हमारे ज्ञानियों में कई कई महा अहंकारी ऐसा भी है। लेबल से कुछ नहीं होता है, खाली धारणा महत्वपूर्ण है। तो ये सात लॉज है फरिश्ता अर्थात अर्श पर रहने वाले, ऊपर, नीचे आना ही नहीं है। नीचे आए तो झगड़े है, नीचे आए तो फिसलन है, नीचे आए तो काई है। काई काम विकार जो है ना उसको कहते हैं काई की तरह है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस एल्गी लाइम या स्लाइम, स्लाइम स्लाइम जो होता है ना, काम विकार इसकी तरह है। एक बार पिसले कि पिसलते ही रहते, एक बार नीचे आए कि नीचे ही आते रहते, एक बार उतरे कि क्रेविंग बढ़ती ही जाती है, एडिक्शन हो जाता है, फिर उससे छूट नहीं पाते। सब कुछ समझते हुए जानते हुए भी वो एक गुफा की तरह है, उसमें व्यक्ति घुस जाता है अंदर, और दोनों ही बेहोशी की हालत में रहते। काम विकार में दोनों व्यक्ति वो नहीं रहते जो उनका वास्तविक स्वरूप है। उनका वास्तविक स्वरूप तपस्वी योगियों का है, पर उन क्षणों में दोनों ही विस्मृति की अवस्था में रहते, बेहोशी। तो फरिश्तों की सात बातें हैं। पहला बताया फरिश्ता अर्थात ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इससे बाहर रहते, परे रहते, धरती उन्हें खींचती नहीं है। धरती का खिंचाव अर्थात विकारों का खिंचाव। दूसरा, ये देश वो सबके है, किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक देश के नहीं, किसी एक राष्ट्र के नहीं। विवेकानंद ने कहा है कभी, माय इंटरेस्ट आर नॉट नेशनल बट इंटरनेशनल। मैं किसी एक भारत के लिए नहीं आया हूं, विश्व के लिए आया हूं, सबके लिए, इसके लिए सब मेरे है, विश्व कल्याणकारी। अगला, तीसरा, जन्म मरण, ये भी एक खेल लगने लगे। अभी जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, फिर पुनर्जन्म, ये होते रहता है यहां पर, गुल 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 गुल, इसी से परे निकल जाना है। परे निकल जाना मतलब ये हमें प्रभावित न करे। और बाबा को क्या कहा जाता है, सदगति दाता, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालने वाला, दुखों से बाहर निकालने वाला। रामायण में वर्णन है, श्री राम जी बैठते केवट की नाव में और केवट उस पार पहुंचा देता है। फिर श्री राम जी कहते हैं उतराई, उतराई अर्थात भाड़ा कितना हुआ, रेंट। तो वो क्या करता है, क्या कहता है, क्या कहता है, राम जी कहते हैं भाड़ा कितना हुआ बताओ तो हम दे आपको। तुम आए घाट हमारे, तुम हमारे घाट में आए, मैं इस गंगा का केवट हूं, तुम भवसागर के केवट आओ, हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम पार कराए राम। हम तेरे घाट आएंगे, तू इस जन्म मरण का जो चक्र है इसका तू केवट है, इसका तू खिवैया है, बाप आए है खिवैया बनकर। हम आए घाट तुम्हारे, तुम आओगे, हम तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम पार कराए राम। तो राम तो अभी आ गया है, तो पार निकलो अब इससे। अगला, फरिश्ते अर्श पर रहते अर्थात ये जो सीजन है इसको भी खेल समझना है, और ये बदलेगा ही, इसको कोई रोक सकता है, कोई कहेगा कि नहीं मैं नहीं जाता, ऐसा हो नहीं सकता। मौसम बदल, उसको भी एंजॉय करना है, हर मौसम को एंजॉय करो, हर मौसम, स्प्रिंग को एंजॉय करो, पतझड़ को, बहार को, बारिश को, धूप को, ठंड को, हर चीज की। I love this season। ऐसा नहीं लोगों के मन में घृणा उत्पन्न हो, इतनी गर्मी, कितनी गालियां दे देते हैं मौसम को, प्रकृति माँ है, इतनी ठंड, दिन रात ठंडी ठंडी करते रहते, enjoy it। फरिश्ते अर्थात हर मौसम को enjoy करने वाले, निरंतर खुश, उड़ने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, celebration, उत्साह उनके जीवन में। अगला, दिन और रात, चाहे दिन हो या रात हो, स्थिति एक रस, दिन में भी, रात में भी, सुबह भी, दोपहर में भी, हर समय एक ही स्थिति। वो हर समय जहां हम बेहोश हो जाते, कोई 24 घंटे बेहोश होश में रहता है और बस एक घंटा बेहोश हो जाता है, उसी एक घंटे में विकर्म होंगे, पाप हो जाएंगे। वो समय कब होता है मोस्टली, कब होता है ये वाला, रात को सोने से पहले। सुबह अमृत वेला कर लिया, मुरली क्लास कराई, करा ली, सुन ली, नोट्स लिख लिए, दूसरों को सिखा दिया, ज्ञान कोर्स करा दिया, सेवाएं एक सेवाएं पूरी कर ली, नुमा शाम का योग कर लिया, शाम का क्लास में डिस्कशन कर लिया, डायरी लिख ली, अभी फ्री है और नींद आ नहीं रही है। अब ये जो समय है, ये है समय डिजिटल नगरी की अज्ञात गलियों में भटकने का, और यहां पे आत्मा भटकती है, बस यही विकर्म हो जाते हैं। फिर सुबह से वापस जागरण, अमृत वेला, बाबा बाबा बाबा, वो जो समय है ना उस पर काम करना है। वो जो वीक स्पॉट है दिनचर्या का, वो हो सकता है ऑफिस में जाने के बाद, वो हो सकता है घर में कोई व्यक्ति आने के बाद, किसी के प्रेजेंस में वो वीक, हम वीक बन जाते हैं, उसी पर काम करना है, टाइम पर, स्थान पर, व्यक्तियों पर। अगला कर्म, कर्म के प्रभाव से परे रहने की विधि क्या है? अकर्ता भाव। मैंने किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, नहीं पर इसका उल्टा भी मत लेना। एक चोर पकड़ा जाता है तो मैजिस्ट्रेट कहता है तुमने चोरी की, हाँ कहता है वो मानता हूं तुमने चोरी की, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वो कहता है पर चोरी मैंने नहीं की, मेरे दाएं हाथ ने की, तो मुझे सजा क्यों दी जा रही है? चोरी तो मेरे दाएं हाथ ने की, मैंने थोड़ी की। वो मैजिस्ट्रेट भी बहुत बुद्धिमान होता है, वो कहता है ठीक है आपके दाएं हाथ को 5 साल की सजा, आपको नहीं सजा दे रहे, दाएं हाथ को। पर वो चोर तो महाबुद्धिमान है। वो अपना कोट निकालता है और उसका हाथ ही नहीं है, वो लकड़ी का हाथ है, वो कहता है लो 5 साल रखो या 500 साल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथ ही नहीं है उसका, लकड़ी वाला है। तो कर्म करते हुए अकर्ता भाव, अंदर ये भाव रहे कि जो भी पुण्य कर्म सत्कर्म कर रहे हम, परमात्मा द्वारा हमसे हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ अगर कुछ पाप होता है तो बोलो हाँ मेरे से हुआ है, मुझे पश्चाताप करना है, पर इससे भी परे जाना है कुछ भी। परंतु जो जागरण में रहता है उससे पाप होगा ही नहीं, पहली बात। जो होश में उससे पाप, पाप तो बेहोशी की अवस्था का नाम है। जैसे अभी जागरण में बैठे हुए हैं, इतना यहां बैठे हुए किसी के मन में क्रोध का विचार आ रहा है, झगड़े का विचार आ रहा है, काम काम एक कामुक संकल्प आ रहे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां बैठे हुए होश में है। यहां से जैसे घर चले जाएंगे, ये सब पट्टी वट्टी पूरी हो जाए, रात का सोने का समय आ गया, उस समय पकड़ता है काम विकार, खालीपन आता है। बस वो जो समय है ना वही जागरण का समय है। अगला जेंडर, अलिंग है, निर्लिंग है, जेंडरलेस, मैं फरिश्ता हूं, स्त्री भान पुरुष भान से परे, स्त्री नहीं पुरुष नहीं, किसका आकर्षण, कैसा आकर, किस शरीर का आकर्षण, ना किसी शरीर को देखने की इच्छा है, ना किसी शरीर को स्पर्श करने की इच्छा है। शरीर मिट्टी जैसे दिख अनुभव हो, शरीर अंदर सारे टॉक्सिन से भरे है, चलो उस दूसरी दृष्टि जो भी खा रहे है वो क्या बन रहा है, अंदर जाके वो उससे भरा है शरीर सर। ये चमड़ी को निकाल दो, अंदर क्या भरी है, कचरा, हड्डियां, मल मूत्र से भरा हुआ, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। सुबह सुबह कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है। अच्छी अच्छी बातें करो ना, थोड़ी शुभ शुभ प्रभु की, बाप समान बनने की। पर ये है शरीर, इस शरीर को देखना है, ब्यूटी इज बट स्किन डीप, चमड़ी तक है, बस चमड़ी को उखाड़ दो, कहाँ है सौंदर्य, कहाँ है ब्यूटी, कहीं कोई ब्यूटी नहीं है। तो फरिश्ता अर्थात अर्श निवासी, तो माँ मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें राजा रानी अप्सरा परिया, बहुत हो गई ये सब झूठी कहानी है, सत्य कहानी सुनाओ, सच्चाई की कहानी सुनाओ, होश की कहानी सुनाओ, तपस्या की कहानी सुनाओ, वैराग की कहानी सुनाओ। ओम शांति। Mom.
माँ सुना मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो ना हो रानी। माँ सुना मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो ना हो रानी। माँ सुना मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो ना हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो जो सभी के हृदय की व्यथा हो। जो हमारी तुम्हारी कथा हो जो सभी के हृदय की व्यथा हो। गंध जिसमें राजा ना हो ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो ना हो रानी। जिसमें सच की भरी चांदनी हो जिसमें उम्मीद की रोशनी हो। जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ सुनाओ मुझे